ज्ञान गोष्ठी में स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्हें अक्सर अमेरिकी कविता का जनक कहा जाता है, वॉल्ट विटमैन।
हाँ बिल्कुल, अमेरिका का बार्ड भी कहते हैं उन्हें।
हाँ, अमेरिका का बार्ड। 1819 में जन्मे विटमैन ने अमेरिकी साहित्य पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। लेकिन सवाल यह है, मतलब कैसे एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति ने एक पूरे राष्ट्र की आवाज बनने का साहस किया और उनकी कविता आज भी क्यों गूंजती है?
ये सचमुच एक दिलचस्प सवाल है। देखिए, विटमैन सिर्फ कवि नहीं थे, वो एक तरह के सांस्कृतिक भविष्यवक्ता थे, कह सकते हैं।
अच्छा।
हाँ, उन्होंने एक ऐसे अमेरिका की नब्ज को पकड़ने की कोशिश की जो तेजी से बदल रहा था, अपनी पहचान बना रहा था और हाँ, गहरे विभाजनों से भी जूझ रहा था। उनकी कविता लोकतंत्र का, व्यक्ति की स्वतंत्रता का और हाँ, शरीर और आत्मा के जुड़ाव का एक बहुत ही बेबाक उत्सव है। इसने उस समय की जो मान्यताएं थीं उन्हें सीधी चुनौती दी।
चलिए, आज विटमैन के जीवन, उनके उस उथल पुथल भरे समय और उनकी उस क्रांतिकारी कविता को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि कैसे उन्होंने न सिर्फ अमेरिकन साहित्य बल्कि दुनिया भर के कवियों और विचारकों को भी प्रेरित किया। तो विटमैन का जन्म हुआ 1819 में। ये वो दौर था जिसे ऊपरी तौर पर अमेरिका में सद्भावना का युग कहते थे, है ना? राष्ट्रपति जेम्स मुनरो का समय।
हाँ, कहते तो थे एरा ऑफ गुड फीलिंग्स, लेकिन वो सिर्फ सतह पर था।
अच्छा।
हाँ, असल भी नीचे तनाव उबल रहे थे, खासकर गुलामी का मुद्दा, वो मुद्दा जो देश को सीधे गृहयुद्ध की तरफ ले जा रहा था।
और ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत का भी समय था।
बिल्कुल, नई तकनीकें आ रही थीं, देश पश्चिम की ओर फैल रहा था, वो मैनिफेस्ट डेस्टिनी वाली बात थी।
हाँ हाँ,
मतलब ये सोच कि पश्चिम की ओर विस्तार तो अमेरिका का हक है, ईश्वर ने दिया है, लेकिन साथ में 1819 की आर्थिक मंदी जैसी चुनौतियां भी थीं। विटमैन का परिवार श्रमिक वर्ग से था तो उन पर इसका असर पड़ा होगा।
हाँ।
उनका डच अंग्रेजी वंश भी दिलचस्प है। एक तरफ न्यू एम्स्टरडैम की वो व्यापारिक जड़ें, दूसरी तरफ वो प्योरिटन नैतिकता जिसके खिलाफ उन्होंने बाद में खूब लिखा, शरीर का उत्सव वगैरह।
और उस वक्त का जो बौद्धिक माहौल था, अमेरिकी रोमांटिकतावाद, ट्रांसेंडेंटलिज्म, एमर्सन, थॉरो।
हाँ बिल्कुल, उनका बहुत जोर था व्यक्ति की अंतरात्मा, प्रकृति से जुड़ाव, परंपरा पर सवाल उठाना, ये सब बातें हवा में थीं। और राल्फ वॉल्डो एमर्सन का 1844 का निबंध द पोएट, वो तो जैसे विटमैन के लिए ही एक पुकार थी।
अच्छा, कैसे?
एमर्सन ने उसमें कहा था कि अमेरिका को अपना कवि चाहिए, कोई ऐसा जो यूरोप की नकल ना करे बल्कि अमेरिकी जमीन, यहाँ के लोकतंत्र, यहाँ के आम लोगों से प्रेरणा ले। और विटमैन ने, उन्होंने इस पुकार को बहुत गंभीरता से लिया।
दिलचस्प। और ये भी बात है कि विटमैन उस समय के जो स्थापित साहित्यिक लोग थे, जैसे लॉन्गफेलो।
हाँ हाँ, जो बोस्टन और कैम्ब्रिज के अभिजात वर्ग के थे,
उनसे बिल्कुल अलग थे। उनकी दुनिया शांत स्टडी रूम नहीं थी।
नहीं, बिल्कुल नहीं, उनकी दुनिया थी न्यूयॉर्क और ब्रुकलिन की भीड़ भरी सड़कें, फेरी घाट, ओपेरा हाउस, मजदूरों की राजनीतिक बहसें। यहीं से उन्होंने आम अमेरिकी जीवन की लय पकड़ी, उसकी भाषा सीखी।
मतलब उनकी प्रेरणा का स्रोत ही अलग था।
एकदम, उनका पूरा जीवन और लेखन अमेरिका के सबसे नाटकीय दौर से गुजरा, मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध, गुलामी पर बढ़ता टकराव और फिर
ग्रे युद्ध।
इन सब ने उनके नजरिए को और गहरा बनाया।
उनके शुरुआती जीवन के बारे में बताएं। लॉन्ग आइलैंड में जन्म, श्रमिक वर्गीय परिवार।
हाँ, पिता बढ़ई थे, घर बनाते थे, माँ डच मूल की थीं, कहते हैं अच्छी कहानी सुनाती थीं। परिवार ब्रुकलिन आ गया जब विटमैन छोटे ही थे। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, अनिश्चितता बनी रहती थी।
और पढ़ाई?
औपचारिक स्कूली पढ़ाई तो सिर्फ 11 साल की उम्र में खत्म हो गई
बस।
हाँ, उनकी असली पाठशाला तो दुनिया बनी, प्रिंटिंग प्रेस में काम सीखा, फिर कुछ समय पढ़ाया भी और फिर पत्रकारिता में आ गए। कई अखबारों में काम किया, संपादक भी रहे, ब्रुकलिन डेली ईगल जैसे अखबार में।
लेकिन वहां से निकाल दिए गए थे।
हाँ, क्योंकि वो खुलकर दास्ता के विस्तार के खिलाफ लिख रहे थे, तो ये दिखाता है कि वो अपने विचारों पर शुरू से ही काफी दृढ़ थे।
इन अनुभवों ने उन्हें जमीनी हकीकत से जोड़ा होगा। और 1848 में वो न्यू ऑर्लियंस भी गए थे कुछ समय के लिए।
हाँ, वो भी एक अहम अनुभव था। दक्षिणी संस्कृति, समाज की विविधता, उसके विरोधाभास, ये सब उन्होंने वहां करीब से देखा। तो लीव्स ऑफ ग्रास के छपने से पहले का ये जो पूरा दौर था, जिसे विटमैन ने बाद में अपना लंबा अग्रभूमि कहा, वो असल में गहन आत्म शिक्षा और तैयारी का समय था।
क्या पढ़ रहे थे वो?
होमर, शेक्सपियर, बाइबल तो पढ़ ही रहे थे, पर सबसे ज्यादा असर, जैसा मैंने कहा, एमर्सन का था। और साथ ही वो न्यूयॉर्क के सांस्कृतिक जीवन में पूरी तरह डूबे हुए थे। ओपरा, भाषण, म्यूजियम, ये सब मिलकर उनकी वो रचनात्मक ऊर्जा तैयार कर रहे थे जो 1855 में सामने आई।
और फिर आया 1855। 36 साल की उम्र, विटमैन ने अपनी बचत से खुद ही लीव्स ऑफ ग्रास का पहला संस्करण छापा।
हाँ, एक पतली सी किताब, सिर्फ 12 कविताएं और किसी पर कवि का नाम नहीं, बस अंदर एक तस्वीर थी विटमैन की।
ये तो बड़ा हिम्मत का काम था।
बिल्कुल, और किताब के अंदर जो था वो तो और भी ज्यादा क्रांतिकारी था। पहली चीज तो शैली मुक्त छंद, फ्री वर्स।
हाँ, वो लंबी बहती हुई लाइनें।
हाँ, कोई पारंपरिक मीटर नहीं, कोई तुकबंदी नहीं, जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे बोलते हैं, उस लय पर आधारित। ये सिर्फ स्टाइल नहीं था, ये उनके लोकतंत्र के विचार जैसा था, खुला, बंधनों से आजाद।
और दूसरी चौंकाने वाली बात,
शरीर और कामुकता का खुला चित्रण। उस जमाने में जहाँ प्यूरिटन नैतिकता का बहुत जोर था, शरीर को पवित्र मानना, उसका उत्सव मनाना, ये एक धमाके जैसा था।
तो जाहिर है प्रतिक्रिया तो मिली जुली रही होगी।
ओ बिल्कुल, बहुत से आलोचकों ने तो उसे अश्लील कहा, भद्दा कहा, कहा ये कविता ही नहीं है।
लेकिन एमर्सन,
हाँ, एमर्सन ने एक निजी खत लिखा विटमैन को और उसमें उन्होंने इसकी जबरदस्त तारीफ की, कहा कि ये अमेरिका का अब तक का सबसे असाधारण ज्ञान और बुद्धिमत्ता का नमूना है।
वाह।
लेकिन विटमैन भी कम नहीं थे, उन्होंने चालाकी से इस निजी खत का इस्तेमाल प्रचार के लिए किया, उसे अखबारों में छपवा दिया बिना एमर्सन की इजाजत के।
अच्छा, ये दिखाता है कि वो कितने जुनूनी थे अपनी कला को लेकर।
हाँ, और शायद थोड़े से मार्केटिंग गुरु भी थे।
फिर आया गृह युद्ध, ये विटमैन के जीवन और लेखन पर एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ।
हाँ, निर्णायक मोड़ था। वो वॉशिंगटन DC गए और वहाँ सैन्य अस्पतालों में स्वयं सेवक नर्स के तौर पर काम करने लगे। वो खुद को घाव मरहम करने वाले कहते थे। उन्होंने हजारों घायल मरते हुए सैनिकों को देखा, उनकी तकलीफ, उनका साहस बहुत करीब से। इन अनुभवों ने उनके स्वास्थ्य पर तो बुरा असर डाला, लेकिन उनकी कविता को एक नई गहराई दी, एक मार्मिकता दी।
इसका असर उनकी कविताओं में दिखता है।
बिल्कुल, खासकर उनके संग्रह ड्रम टैप्स में, और जो उन्होंने राष्ट्रपति लिंकन की मृत्यु पर शोक गीत लिखा, When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed, वो तो अद्भुत है।
इसी दौरान उन्हें नौकरी से भी निकाला गया था।
हाँ, 1865 में वो आंतरिक विभाग में क्लर्क थे। उनके बॉस जेम्स हार्लिन को पता चला कि ये वही विटमैन है जिन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास लिखी है। हार्लिन उसे एक अश्लील किताब मानते थे, तो उन्होंने विटमैन को नौकरी से निकाल दिया।
कितना अजीब है ये, एक तरफ वो देश के जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं
और दूसरी तरफ उनकी किताब को खतरनाक माना जा रहा है। हाँ, ये विरोधाभास था।
बाद में 1873 में उन्हें स्ट्रोक हुआ, पक्षाघात का दौरा, और वो कैमडन न्यू जर्सी चले गए।
हाँ, अपने आखिरी साल उन्होंने वहीं गुजारे। तब तक वो थोड़े पहचाने जाने लगे थे, भले धूसर कवि, गुड ग्रे पोएट के रूप में
लोग उनसे मिलने आते थे।
हाँ, दुनिया भर से प्रशंसक आते थे। ऑस्कर वाइल्ड भी आए थे उनसे मिलने 1882 में।
अच्छा।
और 1892 में उनकी मृत्यु तक वो लगातार लीव्स ऑफ ग्रास पर काम करते रहे, उसे बढ़ाते रहे, बदलते रहे। वो किताब उनके जीवन के साथ साथ बढ़ती गई। 1855 की वो पतली सी किताब आखिर में लगभग 400 कविताओं का एक महाकाव्य बन गई।
तो लीव्स ऑफ ग्रास ही उनका सबसे बड़ा काम है। इसके मुख्य विचारों पर थोड़ी और बात करते हैं। मुक्त छंद, शरीर का उत्सव, और क्या था जो खास था?
एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज थी उनकी कविताओं का मैं, आय।
हाँ, वो आय।
वो आय सिर्फ वॉल्ट विटमैन नहीं है, वो एक विशाल समावेशी आवाज है। वो हर अमेरिकन है, हर इंसान है, पुरुष, स्त्री, गोरा, काला, अमीर, गरीब, मालिक, मजदूर, सबकी भावनाओं, सबके अनुभवों को अपने अंदर समेट लेता है। उनकी वो लाइन है ना,
मैं स्वयं का उत्सव मनाता हूँ।
हाँ, मैं स्वयं का उत्सव मनाता हूँ और स्वयं को गाता हूँ, और जो मैं मानता हूँ वो तुम भी मानोगे, क्योंकि मुझसे संबंधित प्रत्येक परमाणु उतना ही तुमसे संबंधित है। ये बराबरी और जुड़ाव का कितना बड़ा ऐलान है।
ये तो पाठक से सीधा रिश्ता बनाने जैसा है। और उन्होंने आम लोगों को, रोजमर्रा के कामों को कविता का विषय बनाया, ये भी नई बात थी।
बिल्कुल, मजदूर, किसान, अप्रवासी, यहाँ तक कि वेश्याएं, सबको उन्होंने अपनी कविता में जगह दी। उनकी वो सूची बनाने की तकनीक,
कैटलॉगिंग,
हाँ, वो लिस्ट्स,
वो इसी का हिस्सा है।
वो अमेरिकी जीवन की विविधता को उसकी पूरी पूरी समग्रता में दिखाना चाहते थे।
और इसी से जुड़ा है उनका अमेरिकी राष्ट्रवाद। वो अमेरिका को सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विचार मानते थे, एक बनती हुई कविता।
उन्होंने लिखा भी था कि संयुक्त राज्य अमेरिका स्वयं अनिवार्य रूप से सबसे महान कविता है।
बिल्कुल, और वो मानते थे कि कवि की भूमिका लोकतंत्र में बहुत अहम है, वो मरहम लगाने वाला है, सबको जोड़ने वाला है।
लीव्स ऑफ ग्रास के अंदर कौन सी कविताएं खास तौर पर अहम है? आपने सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ और लिंकन वाले शोक गीत का जिक्र किया। हाँ, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ तो खैर उनके दर्शन का सार है। ड्रम टैप्स संग्रह गृह युद्ध की सच्चाई का बहुत शक्तिशाली चित्रण है।
और लिंकन पे लिखा वो शोक गीत व्हेन लिलैक्स लास्ट, वो तो अमेरिकी साहित्य की शायद सबसे महान रचनाओं में से।
और ओ कैप्टन
माय कैप्टन, वो भी लिंकन पे।
हाँ, वो भी लिंकन पे है। वो बहुत लोकप्रिय हुई, शायद उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता, लेकिन उसकी शैली थोड़ी अलग है, ज्यादा पारंपरिक है, तुकबंदी वाली, विटमन के बाकी काम से थोड़ी अलग।
अच्छा।
और उनकी गद्य रचना डेमोक्रेटिक विस्टाज 1871 को भी याद रखना चाहिए। उसमें उन्होंने गृह युद्ध के बाद के अमेरिका के बढ़ते भौतिकवाद और भ्रष्टाचार की आलोचना की थी और साहित्य से एक सच्ची लोकतांत्रिक संस्कृति बनाने की उम्मीद जताई थी।
विटमैन अपने समकालीनों से कितने अलग थे और क्या उन्हें अपने समय में पहचान मिली?
अलग तो बहुत थे, खासकर न्यू इंग्लैंड के जो स्थापित कवि थे जैसे लॉन्गफेलो, उनसे तो एकदम ही अलग थे। उनका साथ दिया, थोरो ने भी उनके महत्व को समझा, एमिली डिकिंसन भी थी, वो भी बहुत मौलिक थी, पर उनकी दुनिया और शैली बिल्कुल अलग थी।
और पहचान
मिली पर विवादों के साथ। जैसा हमने कहा, कई आलोचकों ने उन्हें सिरे से खारिज किया, अश्लील कहा, औपचारिक पुरस्कार तो लगभग मिले ही नहीं।
लेकिन ये दिलचस्प है कि अमेरिका से पहले उन्हें विदेश में पहचान मिलने लगी थी, ब्रिटेन में।
हाँ, ये सच है। विलियम माइकल रोसेटी ने 1868 में उनकी कविताओं का एक चयन ब्रिटेन में छापा। स्विनबर्न जैसे कवियों ने, एनी गिलक्रिस्ट जैसी आलोचकों ने उनकी तारीफ की।
और ऑस्कर वाइल्ड का मिलना?
हाँ, वो इसी बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का प्रतीक था अमेरिका में। हाँ, आखिरी सालों में उन्हें भले धूसर कवि के रूप में सम्मान मिला, प्रशंसक आने लगे, मार्क ट्वेन जैसे दोस्तों ने आर्थिक मदद भी की, 70वें जन्मदिन पर बड़ा सम्मान समारोह भी हुआ, पर उनकी असली प्रतिष्ठा वो तो उनकी मृत्यु के बाद ही बनी।
और ये प्रतिष्ठा कैसे बढ़ी, उनकी विरासत क्या मानी जाती है?
उनकी मृत्यु के बाद उनकी अहमियत बहुत तेजी से पहचानी गई। 20वीं सदी के जो शुरुआती आधुनिकतावादी कवि थे, एज़रा पाउंड, कार्ल सैंडबर्ग, विलियम कार्लस विलियम्स, उन्होंने उन्हें अमेरिकी कविता का कह सकते हैं प्रणेता माना।
पाउंड ने कहा का कि विटमैन ने नई लकड़ी तोड़ी।
हाँ बिल्कुल, मतलब अमेरिकी कविता के लिए नया रास्ता खोला। और उनका असर सिर्फ अमेरिका में नहीं रहा, स्पेन के लॉर्का, चिली के नेरुदा, दुनिया भर के कवियों ने उनमें स्वतंत्रता और मानवीय जुड़ाव की एक नई आवाज पाई।
और 1950 के दशक की बीट जनरेशन,
ओह, उनके लिए तो विटमैन प्रेरणा स्रोत थे। एलन गिन्सबर्ग की कविता हाउल साफ तौर पर विटमैन की शैली से प्रभावित है। और उनकी एक और कविता है अ सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया, उसमें तो वो सीधी विटमैन से बात करते हैं। इसके अलावा हार्लम रेनेसा के लैंगस्टन ह्यूज से लेकर बाद के नारीवादी और LGBTQ कास आंदोलनों तक विटमैन के विचारों ने, खासकर उनकी कैलमस क्लस्टर की कविताएं,
हाँ, जो पुरुषों के बीच प्रेम की बात करती हैं।
हाँ, पुरुषों के बीच गहरे प्रेम और साहचर्य की, उस जमाने के हिसाब से ये बहुत क्रांतिकारी था। इन सब ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है।
तो क्या हम कह सकते हैं कि आज के दौर में भी विटमैन प्रासंगिक हैं?
मेरे ख्याल से तो शायद पहले से भी ज्यादा।
अच्छा, कैसे?
देखिए, लोकतंत्र पर उनका जो अटूट विश्वास था, विविधता का उनका जो उत्सव था, प्रकृति के प्रति उनकी संवेदनशीलता, और सबसे बढ़कर उनकी वो गहरी मानवीय सहानुभूति, ये सब आज की दुनिया के लिए कितने जरूरी सबक है।
हाँ, ये तो है।
वो हमें जटिलताओं और विरोधाभासों को स्वीकार करना सिखाते हैं। उनकी वो लाइन याद है, क्या मैं स्वयं का खंडन करता हूँ? बहुत अच्छा, तो मैं स्वयं का खंडन करता हूँ। मैं विशाल हूँ, मुझमें भीड़ समाई है।
हाँ, आई कंटेन मल्टीट्यूड्स।
बिल्कुल, ये आज का जो ध्रुवीकृत समाज है उसके लिए कितनी जरूरी याद दहानी है।
सचमुच, विटमैन का वो हर चीज को गले लगाने वाला नजरिया, शरीर, आत्मा, लोकतंत्र, प्रकृति, अच्छा बुरा, सब कुछ, ये एक चुनौती भी है और प्रेरणा भी।
हाँ बिल्कुल, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ लोग अपनी पहचानों को बहुत बहुत संकरे दायरों में बांध लेते हैं, जहाँ असहमतियों को दुश्मनी मान लिया जाता है। ऐसे में विटमैन का वो भीड़ को समाहित करने का साहस, वो हमें क्या सिखा सकता है? क्या हम जीवन की, समाज की, इस देश की जो जटिल और अक्सर उलझी हुई सच्चाई है, उसमें वैसी ही कविता और सार्थकता खोज सकते हैं जैसे विटमिन ने खोजी थी? ये सवाल शायद आज हमें खुद से पूछना चाहिए। क्या हम में वो खुलापन, वो स्वीकार्यता आ सकती है जो उनकी कविता की जान है?
सोचने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ लोग अपनी पहचानों को बहुत बहुत संकरे दायरों में बांध लेते हैं, जहाँ असहमतियों को दुश्मनी मान लिया जाता है। ऐसे में विटमिन का वो भीड़ को समाहित करने, कंटेन मल्टीट्यूड्स का साहस, वो हमें क्या सिखा सकता है? क्या हम जीवन की, समाज की, इस देश की जो जटिल और अक्सर उलझी हुई सच्चाई है, उसमें वैसी ही कविता और सार्थकता खोज सकते हैं जैसी विटमिन ने खोजी थी? ये सवाल शायद आज हमें खुद से पूछना चाहिए। क्या हम में वो खुलापन, वो स्वीकार्यता आ सकती है जो उनकी कविता की जान है?
सोचने वाली बात है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।